Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Padri kehta hai us vyakti ne akhbar aage se hataya muh se और हाथ जोड़ के कहने लगा कि फादर, मैं भी यही सोच रहा हूं कि इन बच्चों का कुछ करूं, लेकिन क्या करूं। अभी जिस अस्पताल से हम इसमें चढ़े हैं, एक घंटा पहले इनकी मां मर गई। हम अस्पताल में थे चार दिन से, एक घंटा पहले इनकी मां मरी है। इनको लेकर मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो पादरी कहता है, उसकी ये बात सुनते मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि वो व्यवहार को सत्य मान बैठा था। बच्चे देखो, एक स्टेशन अगले पर उतर जाएंगे, वहां उतर जाएंगे, स्वप्न जैसा है, क्या होगा। लेकिन जो ही उसको सत्य माना, तो कितना बड़ा, किसी का दुख बांटने के लिए पादरी बने हैं। ऐसा उसने लिखा कि पादरी जो है दूसरों का दुख बांटने के लिए बने हैं, संत दूसरों का दुख बांटते हैं, उनके दुख को बढ़ाते नहीं। और वो कहते हैं, मैंने जो क्रोध से उसको कहा, क्योंकि कहता कहने को तो मैंने बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि श्रीमान जी, क्या आप इनका कुछ करोगे, लेकिन अंदर मेरे क्रोध भी था और व्यंग भी था। लेकिन वो पादरी कहता है कि उस दिन के बाद से मेरा जीवन ही बदल गया। फिर कभी मैं दूसरे की स्थिति को भी ध्यान में रखो, अगर आप दूसरे की स्थिति को भी ध्यान में रखोगे तो उसी को अव्यवहार्य कहते हैं। व्यवहार करते हुए भी व्यवहार में नहीं, व्यवहार तो चलेगा ही। अगर आप पैदा हो गए हैं तो जब तक खत्म नहीं होंगे जीना ही है, मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, हंसेंगे भी, रोएंगे भी, सब होगा। लेकिन अगर इसको हम सत्य मान लेंगे, एक क्षण के उस ऊधम को जो बच्चे मचा रहे थे, पादरी ने इतना सच माना कि जैसे दुनिया ही बदल गई। जैसे क्रोध के क्षणों में जहां कहीं भी क्रोध आता है, उस समय कुछ होश नहीं रहता और निकल जाने के बाद फिर कुछ वो भी नहीं रहता। कभी भी गौर करो तो हर बात पर पता लगेगा ही कि स्वप्न ही है, उससे बढ़ के और कुछ नहीं था। लेकिन स्वप्न को सत्य मान लिया तो ये काम, क्रोध, लोभ सारे ही शुरू हो जाएंगे। और अगर इसको आपने अव्यवहार्य मान लिया तो व्यवहार रहेगा लेकिन प्रेम पूर्ण। अव्यवहार्य का अर्थ केवल इतना ही है कि प्रेम पूर्वक व्यवहार हो, क्योंकि जहां द्वैत नहीं है, जहां आप अपना ही विस्तार समझो, अपना विस्तार एक होता है कि हम ये समझें कि ये सब मेरे हैं, एक होता है ये मैं ही हूं, मेरा ही रूप है जो मैं, जैसे फिर उदाहरण वही आएगा कि जब आप सुषुप्ति में होते हैं, सो जाते हैं, तो आप सब एक हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं। और स्वप्न से जाग जाते हैं तब भी आप सब के सब एक ही हैं। तो केवल जागते हुए अपने आप को एक दूसरे से अलग मानना, जीवन की तीन अवस्थाएं हैं, दो तिहाई तो आप छोड़ दो, दो पार्ट तो छोड़ दो और एक को पकड़ के बैठ जाओ। तो शास्त्र कहता है ये कोई अकलमंदी की बात नहीं, या तो फिर स्वप्न को भी सत्य मान के उतना ही करो, लड़ाई झगड़े जितने करने हैं, क्योंकि वो भी आपने ही देखा और आपने ही किया। लेकिन आप ये भी जानते हो कि दो मिनट के स्वप्न में बीसों साल देख लेते हैं हम, कई वर्ष बीत जाते हैं कि वहां रहते रहते ये करते हुए। और पौराणिक कथाओं में तो बहुत अच्छी तरह से, मार्कंडेय की कथा है भागवत पुराण में किसी में, नारद की, कि जो माया को देखना चाहते हैं तो एक क्षण में ही उन्होंने कितने कितने युग व्यतीत कर दिए। योग वशिष्ठ को कभी आपने सुना हो या पढ़ा हो, अद्वितीय और अद्भुत ग्रंथ है, उसमें भी ब्रह्म का निरूपण है, वेदांत का असली ग्रंथ वो ही है, लेकिन उसमें भी इन्हीं बातों को ही और विस्तार से समझाया गया है दूसरे ढंग से। तो कहने का अभिप्राय ये है, जहां अव्यवहार्य का शब्द आता है वहां बात यह है कि व्यवहार को, जागृत को सत्य ना मान। ट्रेन पे बैठे हैं, उतर जाना है अभी, कोई इस स्टेशन पे उतरेगा, कोई उस पे उतर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेन पे हमेशा के लिए आप ट्रेन पे बैठे हो और हमेशा के लिए वो बच्चे आपके लिए सिरदर्द बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। कौन कहां उतर गया, कौन कहां रह गया, वो पादरी कहता है। उसके बाद से वहां से लौट कर जहां वो सरमन के लिए जा रहा था, फिर वो उसका बहुत पक्का मतलब एक मित्र बन गया और उस आदमी दोनों आपस में बहुत स्नेह से रहे। उनके बच्चों का भी आगे उन्होंने ठीक तरह से सोच के उनको पढ़ाया, ये किया, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी अपने जीवन। तो अव्यवहार्य, अव्यवहार्य का मतलब होता है व्यवहार में उद्विग्नता ना आए। तो भगवान जो है वो जो तुरीय तत्व है वो अव्यवहार्य है। अव्यवहार्य का मतलब है कुछ भी ना करते हुए सब कुछ कर रहा है। देखो श्रीमद् भगवत गीता में तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की बात कही ही गई है। वो अव्यवहार्य का ही एक रूप है कि कर्म में भी अकर्म और अकर्म में भी कर्म को देख लेना। तो देख लेने का मतलब यह है कि कर्म करते हुए भी कर्तापन का अभिमान ना हो। इसी को ही सारे शास्त्र अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे। तो अव्यवहार्य अदृष्टम की बात तो हो गई कि ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। अव्यवहार्य का अर्थ ये हो गया कि वो उसमें द्वैत नहीं है, उसमें खंड नहीं है, उसमें विभाजन नहीं है। ऐसा ध्यान, अगर उसमें विभाजन नहीं है तो हम कल्पित करते हैं विभाजन को। हम जो आपस में एक दूसरे को बांटते हैं ये हम अपनी कल्पना को सत्य का रूप देते हैं। कि सत्य का रूप देने का अर्थ ये है कि जैसे किसी ने अपने आप को ब्राह्मण मान लिया, किसी ने क्षत्रिय मान लिया, किसी ने वैश्य मान लिया, किसी ने शूद्र मान लिया, किसी ने, और फिर ब्राह्मणों में अनेक अनेक तरह के, आपस में भी ऐसा नहीं है कि सब ब्राह्मण एक जैसे ही हों, उनके भी झगड़े रहते हैं कि ये सरयू पानी है, ये सारस्वत है, ये गौड़ है, ये है, ये वो है, उनके हर एक के फिर आपस में झगड़े। तो ये क्या है, ये व्यवहार अर्थात इन नामों को सत्य मान लेना, जो केवल मात्र आभास मात्र के संसार में सुगमता के लिए इनको अपनाया था और वो बजाय सुगमता के उन्होंने और क्लेश पैदा कर दिए। तो अव्यवहार्य का अर्थ केवल इतना ही है कि व्यवहार करते समय भी ये बात ध्यान में रहे कि तत्व तो वही है, वो एक ही है, उसके साथ हम ऐसा व्यवहार न करें ये मानकर कि ये सचमुच में सत्य है। क्योंकि सत्य तो वही होगा जो त्रिकालाबाधित हो, जो कभी खत्म ही ना हो, ना जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में। अगर जागते हुए हम जो देखते हैं ये स्वप्न में नहीं रहता, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये जागृत की जो कुछ भी है ये सत्य नहीं, और जो कुछ भी स्वप्न में देखा उठने पर वो नहीं रहता तो इसका अर्थ है कि वो भी सत्य नहीं। और जागृत और स्वप्न में जो जो कुछ भी किया अगर वो सुषुप्ति में नहीं रहता तो इसका अर्थ है ये जागृत और स्वप्न का देखा हुआ भी सत्य नहीं। तो फिर सत्य क्या है, सत्य वही है जो सुषुप्ति में भी रह गया अर्थात आत्मा, वो नहीं बदला, वो ज्यों का त्यों रहा। उस आत्मा के स्वरूप को ये समझा रहे हैं इस श्रुति में, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम। अग्राह्यम, अग्राह्यम का मतलब है कर्म इंद्रियों की पहुंच से भी बाहर, उसको पकड़ नहीं सकते। जब पकड़ नहीं सकते तो फिर इसमें सब कर्म इंद्रियां आ जाएंगी। जैसे अदृष्टम में सब ज्ञान इंद्रियों को ले लिया तो अग्राह्यम में सब कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियों का मतलब हाथ से उसको पकड़ नहीं सकते, पांव से पैदल चलकर उस तक पहुंच नहीं सकते। कारण यह है कि उस आत्मा को अगर वो यहां ना हो, किसी और जगह हो तो हम जाएं, और वो हमारे से अलग हो तो उसे पकड़ेंगे। तो जब वो अपने से अलग है ही नहीं और जहां पर है वहीं पर है, हर जगह है, तो फिर उसमें कर्म इंद्रियां भी क्या करें, ना उसको पकड़ा जा सकता है, ना चलकर उससे जाया जा सकता है, और ना ही वो किसी तरह से वाणी का विषय बन सकता है, उसको हम बोलकर भी नहीं बतला सकते। तो कर्म इंद्रियों का भी उस तक पहुंच नहीं है। अग्राह्यम अलक्षणम, अलक्षणम का मतलब है कि उसका कोई भी लक्षण नहीं है, कोई भी चीज उसकी ओर इशारा नहीं कर सकती। लक्षण कहते हैं उसको जो लक्ष्य की ओर इशारा करे, जहां हमें पहुंचना है उधर कोई बना हुआ चिन्ह हो तो उसको लक्षण कह सकते। लक्षण का अर्थ होता है इशारे से बात को समझाना, तो उसका कोई लक्षण भी नहीं है, इशारे से भी उसको नहीं समझा सकते हम किसी तरह से, क्योंकि इशारा भी उधर ही होता है जिसको पहले किसी ने देखा हो, जिसका अनुभव होगा, कहीं उसको देखा होगा, तो तभी तो किसी को हम इशारा करके कहेंगे कि वो इधर को है। तो जिसका आज तक अनुभव ही नहीं, देखो जो पहले चीज देखी हुई हो, पहले हमने कहीं देखा हुआ है कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, ये पहले देखा हुआ हो तो फिर धुआं देखकर हम ये कह सकते हैं यहां अग्नि होगी, तो धुआं लक्षण बन जाएगा अग्नि का, अग्नि तक पहुंचने का। हम ये बात कह सकते हैं कि देखो वहां धुआं है तो वहां आग होगी जरूर, वो तभी कहेंगे हम क्योंकि पहले देख रखा है। तो लक्षण भी तभी बनते हैं अगर पहले से किसी चीज को देखा हुआ हो तो, नहीं तो लक्षण भी नहीं बनेंगे। तो आत्मा का लक्षण तो कोई बनेगा ही नहीं, वो तो किसी तरह से, क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहां ये हो तो वहां आत्मा होगी, क्योंकि आत्मा कोई जगह ऐसी है नहीं जहां ना हो, इसलिए भी उसका कोई लक्षण नहीं बन सकता। लक्षण हमेशा उसका बन सकेगा जो देश काल वस्तु परिच्छेद में हो, टुकड़े हो, इस जगह पर हो दूसरी जगह ना हो, इस समय में हो दूसरे समय में ना हो, आज से 2000 वर्ष पहले थी अब नहीं है, या आज नहीं है 2000 वर्ष बाद होगी, या एक साल बाद होगी, ये काल से परिच्छेद हो गया। काल परिच्छेद का अर्थ है कि अब एक छह महीने पहले नहीं थी, आगे बनेंगी, तब भी उसको हम कुछ बतला सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि भाई छह महीने बाद ये काम होगा। तो जिसमें देश काल वस्तु परिच्छेद ना हो, जिसको ये बांट ना सके, उसका कोई लक्षण भी नहीं बन सकता, इसलिए अग्राह्यम अलक्षणम कह दिया। अलक्षणम के साथ फिर कहते हैं अचिंतयम, अचिंतयम का अर्थ है अंतःकरण की भी वहां तक पहुंच नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों का यहां पर निषेध कर दिया गया, क्योंकि चिंतन जितना भी होगा वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार का काम है, ना तो उसकी हम मन से कोई कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा है किस तरह का है, क्योंकि कल्पनाएं भी कहीं ना कहीं कोई उसका चिन्ह हो, कोई निशानी हो, कोई बात हो थोड़ी बहुत सुनी सुनाई देखी दिखाई, तो हम कल्पना भी कर लें कि ये कैसी, और कल्पनाओं में भी देखो कल्पनाएं भी कई ऐसी कल्पनाएं हो जाती हैं कि कल्पनाएं भी सच और झूठ ऐसे करके लोग कल्पनाएं भी बना लेते हैं। कई चीजें कल्पित होती हैं, कल्पित होने का अर्थ ये है जैसे साहित्य में परियों की कहानियां हैं, परियों की बचपन में बहुत कहानियां पढ़ी होंगी सुनी होंगी आपने भी कि ये परियां होती हैं ऐसे हैं उड़ती हैं हवा में जैसे करते, तो परियों के पंख होते हैं, परियों के पंख होते हैं, परियों के सींग नहीं होते और परियों की पूंछ भी नहीं होती, तो फर्ज करो कोई एक परी हो, उसकी पूंछ बनी हुई हो या उसके सिर पे सींग बनी हुई हो, और आपको कहा जाए कि देखो ये परी है, तो आप कहोगे नहीं नहीं ये परी नहीं, गलत है। अरे वो जो पंखों वाली है वो भी गलत है, जो पहले की थी वो कहां सही है। लेकिन वो कल्पना इतनी रूढ़ हो गई हुई है कि हम पंख वाली को सही मानते हैं, जबकि है वो भी नहीं। या तो हो ना कि जो पंख वाली परी है वो सचमुच में कभी मिल गई हो आपको कहीं, या उससे कोई वार्तालाप हुई हो, है वो भी नहीं, लेकिन उसको हमने सच मान लिया। इसको दृढ़ मूल कहते हैं, इसको ही विचित्रता कहते हैं संसार की। ये विचित्रता हो गई कि जो नहीं है सचमुच में कोई परी नहीं होती परों वाली, और उस पर सींग लगा दिए तो हमने और काट कर दी कि ये परी नहीं, तो वो झूठ को और वो सिद्ध करना कि नहीं पहले झूठ को तब सच था, ये अब झूठ बन गया। तो ये जो चिंतन है वो भी इस तरह का नहीं कर सकते हम, ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में। देखो आत्मा की यहां बात चल रही है, तुरीय तत्व की बात चल रही है, आपके सही स्वरूप की बात चल रही है, यहां वो फोटो की बात नहीं चल रही कि भगवान कृष्ण की आप फोटो बना दो। वो ठीक है कि आप अगर उसके गले में आप कृष्ण के हाथ में डमरू पकड़ा दोगे, त्रिशूल पकड़ा दोगे, तो आप खैर उसको भी मान जाओगे, क्योंकि हो सकता है कभी पकड़ ले, वो लीलाधारी है, कुछ भी कर लेगा, त्रिशूल भी पकड़ लेगा, वो भी कर लेगा। हमारे यहां तो बहुत उदारता है, कभी झूठ हम कह ही नहीं सकते कि ये वो कृष्ण की फोटो नहीं है। लेकिन असली बात यह है कि वो आपकी आत्मा नहीं है, फोटो तो हो सकती है, जिसको हमने आराधना के लिए या अपने ध्यान के लिए, वृत्तियों को टिकान एक जगह पर ठहराने के लिए हमने कुछ चिन्ह बनाए, सात्विकता उनके साथ जोड़ी कि उनका मन में ध्यान करते हुए, वृत्तियों में लाते हुए, स्मरण करते हुए मन पवित्र होता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन मन भले ही पवित्र होता रहे, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा की स्वरूप को नहीं जान सकते। जब तक उसको नहीं जान सकते क्लेश में रहें। क्लेश में रहने का मतलब यह है कि अगर उस मूर्ति का भी जो हमारे पास है, रोज हमने रखी हुई है, अगर उसका कोई हाथ टूट गया या किसी ने तोड़ दिया कुछ मार के, तो हम उसमें भी क्लेश में ही रहें कि इसको क्यों तोड़ दिया गया, ऐसा क्यों किया गया। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि किसी भी तरह से उसका चिंतन भी नहीं हो सकता, अचिंतयम, ना तो उसकी कल्पना हो सकती है, ना उसके बदले में कोई निश्चयात्मिक निर्णय हो सकता है। निश्चयात्मिक का मतलब है कि वो ऐसा ही है, जैसे बुद्धि से हम निर्णय करते हैं कि दो और दो चार होते हैं, बस ये फाइनल हो गया कि दो और दो चार हैं, फिर उसके आगे पीछे और कोई बात नहीं। ऐसा आत्मा के बारे में निश्चयात्मिक रूप से आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा है। केवल वही शब्द एक बने हुए हैं, वो सच्चिदानंद सत्य चित आनंद है, लेकिन ये भी शब्द जितने के जितने हैं, ये इनके बारे में भी जब कोई सत्य कहे, चित कहे, आनंद कहे, तो ये कहीं भी आपके चिंतन में नहीं आएंगे। ये तभी चिंतन में आएंगे जब आप सत्य का अर्थ होना समझोगे, होना, होने का मतलब है कि मैं हूं, अपने पर ले आओगे कि मैं हूं, मैं हूं तो मतलब है सत्य हूं, मैं असत नहीं। तो जब ऐसा इसका सोचना शुरू करोगे कि मैं हूं, तो फिर बात आ जाएगी कि क्या ये शरीर मैं हूं, फिर आप देखेंगे कि ये तो परिवर्तनशील है, ये तो बदलता रहा है। तो जो मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं हूं, मैं ये शरीर को ध्यान में रखता हुआ नहीं कह रहा, जो ही इससे, क्योंकि देहा अध्यास से ऊपर उठ जाना ये बहुत मुश्किल बात है, और साधना भी यही, जब तक इससे उठेंगे नहीं तब तक तो किसी जगह पर पहुंचेंगे नहीं। तब तक जब तक मैं के साथ ही ये शरीर जुड़ा रहेगा, तो शरीर के साथ नाम और रूप भी जुड़े रहेंगे, नाम और रूप के साथ मेरी जाति भी जुड़ी रहेगी, मेरा प्रांत भी जुड़ा रहेगा, मेरे रस्मों रिवाज भी जुड़े रहेंगे, मेरा खान पीन पहनना ये सब जुड़ा रहेगा। कि ऐसे ऐसे सिंधियों का ऐसा होता है, पंजाबियों का ऐसा होता है, गुजराती ऐसे होते हैं, महाराष्ट्रियन ऐसे होते हैं, तो वो तो सब कुछ साथ में जुड़ा रहेगा, फिर तो एकत्व तक कभी हम पहुंच ही नहीं पाए। तो इसलिए जहां हूं की बात आती है कि मैं हूं, तो फिर ये विचार होता है कि मैं क्या हूं, सचमुच में ये शरीर ही हूं या मैंने तो इस शरीर को देखा बचपन से, जानता हूं ये पहले इतना सा था, फिर उतना सा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ, इसको बदलते हुए मैंने देखा है, लेकिन मैं स्वयं वैसे का वैसा ही, शरीर के साथ मिलकर मैं अपने आप को कह देता हूं कि अब मैं अब बुढ़ा हो रहा हूं, अब वैसा हो रहा हूं। ये शरीर से तादात्म्य स्थापित कर बुद्धि को अपनी आत्मा पर आरोपित करके कह रहा हूं, वस्तुतः आत्मा जितना चेतन तत्व जितना बचपन में था वो उतना ही अब, वो न कम हुआ न बूढ़ा हुआ न जवान हुआ, वो वैसे का वैसे ही। करते करते जब उस पर नजर चली जाए तो फिर ये पता लग जाता है कि मैं सत के साथ साथ चित्त भी हूं, और जहां सत और चित्त हूं तो वहां आनंद भी होता है, वस्तुतः मुझे दुख कोई नहीं है, जो अपना नहीं है उसे अपना मानकर दुखी हो रहा, जो है ही नहीं अपना और कभी भी कहीं भी कहीं किसी तरह का दुख हो, जब भी गौर करके आप सोचोगे तो दुख का मुख्य कारण यही होता है कि किसी ऐसी वस्तु को, किसी ऐसे विचार को, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे स्थान को हम अपना मान बैठे हैं जो असल में अपना है नहीं। तो जहां ही ये बात हो जाती है, चाहे वो अपना शरीर ही है इसको अपना मान बैठे हैं और ये अपना है नहीं, इसने जाना ही है, ये नहीं था कुछ वर्ष पहले, अब कुछ वर्ष बाद ये नहीं रहेगा, तो इसलिए ऐसे ही ये तो शरीर की बात हो गई, तो बाकी जितनी चीजें हैं उनको फिर अपना कैसे मान लो। जब ये ही अपना नहीं है तो इसके माध्यम से मैंने जो और चीजें पकड़ी कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये उसकी है, ये उसकी है, वो कभी अपनी हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से जो ही ये विचार आएगा अपने पर कि सत का चित का कि क्या हूं, फिर जाकर हम अपने असली स्वरूप पर पहुंचेंगे। तो इसको उन्होंने कह दिया कि ये अचिंत्यम, जिसका अपने से अलग रूप से चिंतन भी नहीं की हो सकता, इसका जब भी चिंतन होगा वो स्वरूप के रूप में ही होगा। अर्थात चिंतन की, देखो ये चिंतन की एक विशेषता होती कि जब हम सोचने लगेंगे तब द्वैत होता है, उसको अलग मान के ही सोचते हैं, लेकिन जैसे आप ये समझ लो कि एक बूंद और समुद्र के उदाहरण देते हैं कि बूंद फिर समुद्र में मिल गई तो खत्म हो गई, वो अपने आप में रहेगी नहीं, तो इसी को व्यष्टि चेतन और समष्टि चेतन कहते हैं। जो ब्रह्म है वो समष्टि चेतन, समष्टि का मतलब व्यापक, पूरा फैला हुआ, अंदर बाहर नीचे ऊपर जहां जहां भी कहो, व्यष्टि चेतन का मतलब वो जो मेरे अंदर है, जो मेरे तक सीमित है, मेरे शरीर तक जो सीमित है, जो मुझे इधर उधर ले जा रहा है, वो जो चेतन है वो मेरा अंतःकरण, आपका अंतःकरण, ये अलग अलग है। इसलिए चेतन एक होने पर भी अंतःकरण अलग होने की वजह से हम सब की रुचि, हम सब का सोचना, हम सब का व्यवहार, खाना पीना पहनना सब अलग अलग है, अपने अपने ढंग के हैं, लेकिन चेतन की दृष्टि से सब एक ही। तो व्यष्टि चेतन समष्टि को जाकर छू ले तो वो स्वयं खत्म हो जाता है, वो समष्टि में ही मिल गया, फिर वो रहा ही नहीं, अलग उसका कुछ नहीं रहा। तो इस तरह से व्यष्टि चेतन का समष्टि को छू लेना, और जब तक वो व्यष्टि चेतन रहता है, अलग रहता है, तब तक ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि हैं, जो ही वो व्यष्टि में जा मिला तो ये सारी अवस्थाएं उसमें कल्पित हैं, अर्थात वो अपने आप में ज्यों का त्यों एक रस एक आत्म प्रत्यासार, ऐसा शब्द उसके लिए इस श्रुति में भी आया, कल उसको थोड़ा व्याख्या भी की थी। तो वहां वो ये कह रहे थे अचिंत्यम अव्यपदेशयम, अब व्यपदेशयम का अर्थ होता है कि उसको किसी भी तरह से उपदेश करके या इशारा करके या अभिनय करके समझाया भी नहीं जा सकता। व्यपदेश का मतलब होता है उपदेश के माध्यम से समझा देना, इसका अर्थ होता है इशारे के माध्यम से समझा देना, इसका अर्थ होता है अभिनय के माध्यम से समझा देना। अभिनय का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति जिसकी जुबान नहीं है, वो अपनी सारी बातें अभिनय से समझा देता है। गूंगे व्यक्ति से कभी बात करो तो वो सारी बात करेगा, लेकिन हर बात को इशारों से समझा देगा, और मां कैसी है, पिता कैसे हैं, वो कैसे, सबका बता देगा वो उसमें, और आप समझ भी जाओगे। तो वो वहां वाणी तो नहीं है, लेकिन वार्तालाप अर्थात आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो तत्व है ये अव्यपदेशयम, इसको उस ढंग से भी नहीं समझाया जा सकता, अभिनय के माध्यम से भी नहीं समझाया जा सकता कि ये कैसा है। और फिर उन्होंने आगे लिख दिया एक आत्म प्रत्यय सारम, ये तो प्रत्यय के रूप में ही समझोगे इसको, और प्रत्यय की बात कल की ही थी कि जो आपके आदर्श में जैसे ये कि इससे बढ़िया कुछ है या नहीं, फिर इससे बढ़िया है या नहीं, हम कहते जाएंगे कि है, लेकिन वो जहां कहीं भी है वो प्रत्यय में, वो आपकी एक सात्विक वृत्ति में है, वैसे व्यवहार में कभी नहीं। तो वो एक आत्म प्रत्यासार है, वो जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं वो वहां तक पहुंच पाना केवल उसी चिंतन के माध्यम से ही है। प्रपंचोपशमम शांतम, उसमें कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच का मतलब होता है विस्तार, प्रपंच का मतलब होता है विभिन्नता, प्रपंच का मतलब होता है पांच पांच के ग्रुप, पांच तत्वों से बनी हुई चीजें, पांच तन मात्राओं से बनी हुई चीजें, पांच विषय, पांच प्राण, ऐसे ऐसे करते हुए इन सब का संयोजन जो है ये प्रपंच कहते। वहां कोई प्रपंच भी नहीं है। प्रपंचोपशमम शिवम, शिवम का मतलब है कल्याणकारक, वो हमेशा, उससे कभी अकल्याण होता ही नहीं, कल्याण ही उसका एकमात्र स्वरूप है। और अद्वैतम, उसमें कोई द्वैत नहीं है। चतुर्थम मन्यते, चतुर्थम का मतलब है जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद बस जो कुछ बच जाता है चौथा, वही वो है स आत्मा स विज्ञेयम्, उसे ही आत्मा कहते हैं, उसे ही आप जानो। तो ये समझ लेने के बाद कि वो चौथा तत्व है, उसी को अब जानना है। जानने का मतलब साधना के माध्यम से उसकी अनुभूति। अब इसके लिए ओम शब्द का प्रयोग करेंगे कि चौथे तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचे, तो कल से ओम शब्द की व्याख्या करेंगे, ओम के सहारे इस चतुर्थ को जानने का प्रयास करें। ओम शब्द।